शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बिखरे हमारे ध्यान में। सबसे पहले तो मैं एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ, जिसके सामने अब तक की दी गई सब सूचनाएं फीकी पड़ जाएंगी। समय सार परमागम का अंग्रेजी में अनुवाद करना डॉक्टर पारसमल जी ने स्वीकार कर लिया है। ये बहुत अच्छे विद्वान हैं, जैन दर्शन के भी और अंग्रेजी के भी। अमेरिका में 17 साल तक रहे हैं, अध्यापन काम किया है और वो इस काम करने में पूरी तरह समर्थ हैं। सैद्धांतिक बहुत गहरी उनकी पकड़ है, उनके अनुवाद को किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेवा फेडरेशन का आरंभ निश्चित रूप से अखिल बंसल के चित्त की उपज है और उन्होंने इसे अपने स्तर पर ही आरंभ किया था। समय की मांग और उसकी उपयोगिता को देखकर धीरे धीरे सारा मुमुक्षु समाज और मुमुक्षु युवक उसमें जुड़ते गए और उसने आज ये रूप धारण कर लिया है। समय बहुत हो गया है, इसलिए मैं यहाँ वहाँ की भूमिका में ज्यादा न उलझ कर सीधे दो चार बातें आपसे करना चाहता हूँ। आपने अभी जो सूची देखी उसमें सफेद बाल और काले वाले बाल वाले सब हैं। आप सोच सकते हैं कि युवाओं का फेडरेशन, उसमें सफेद बाल वालों का क्या काम। लेकिन कोई भी काम इस जगत में करना हो तो जोश भी चाहिए और होश भी चाहिए। जोश के बिना काम होता नहीं, जोश के बिना गाड़ी दौड़ती नहीं और होश के बिना एक्सीडेंट हुए बिना रहता नहीं। यदि युवा फेडरेशन की गाड़ी को दौड़ाना है तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए जो युवकों में होती है, और कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए इसके लिए होश चाहिए जो भाग्य से बुजुर्गों के पास होता है। यदि दोनों ये मिल जाएं तो काम भी होता है और सही दिशा में भी होता है, अन्यथा इस अहिंसात्मक आंदोलन को हिंसात्मक रूप लेते कोई देर नहीं लगती है। इसलिए इसका गठन जो किया गया है उस बात को ध्यान में रखकर किया गया है। मेरी परिस्थिति ये है कि जब पूज्य गुरुदेव जी के सत्य समागम में हम आए थे तब बहुत लिमिटेड कार्यकर्ता उस मिशन में थे। परिसर में विद्वान बाहर प्रदर्शन करने जाते थे तो 10-5 होते थे उंगलियों पर गिनने लायक। चंदन भाई, बाबू भाई, युवल जी, एक दो चार नाम गिन लेते थे बस खत्म। और आज 6 की जगह 600 विद्वान हमारे पास उपलब्ध हैं। लोगों को तो उज्जवल पक्ष देखने की आदत ही नहीं है, वो तो हमेशा अंधेरे पक्ष को देखना ही पसंद करते हैं। अरे साहब, गुरुदेव जी के जमाने में क्या मजा था, क्या था, अब सब खत्म, बर्बाद हो गया। क्या हो गया बर्बाद? गुरुदेव श्री चले गए तो दूसरे गुरुदेव श्री तो बन नहीं सकते, लेकिन काम रुक गया हो ये बात नहीं है। और आज काम करने के लिए हमारे पास इतनी बड़ी फौज तैयार है, کل کارخانہ کھول دینا اور اس میں بہت بڑے پیمانے پر مال کا اتپادن کرنا، لیکن مارکیٹ نہ ہو تو مال پڑا پڑا سڑ جائے گا، کارخانہ بھی بند ہو جائے گا، وہ مال بکنا بھی تو چاہیے. اور اس بار فیڈریشن کی رپورٹ میں اور چرچا میں یہ بات سامنے آئی کہ اتنی بڑی فوج ہونے کے بعد بھی لوگوں کو ایک ایک ودوان نہیں مل رہا ہے، مانگ اس سے کتنی گنی کھڑی ہوئی ہے. ایک لاکھ کار ہم بناتے ہیں تو 3 لاکھ کار کی مانگ کھڑی ہو گئی ہے. پہلے 100 کار بنتی تھی اور 50 بکتی تھی، بس 50 پڑی رہتی. یہ دونوں ہی شبھ چن ہیں. اب وہ زمانہ گیا، ایک ایک پتا کے 10-10 بیٹے ہوتے تھے، اب تو ایک بھی مشکل سے ہوتا ہے. سوامی جی جب جے پور آئے تھے تو جے پور کے ایک راجستھانی کبھی نے 4 پنکتیاں بولی تھیں، وہ پنکتیاں تو مجھے یاد نہیں ہیں، الٹا سیدھا بھاو یاد ہے، میں کوشش کرتا ہوں انہیں بولنے کی. کہ سوامی جی بڑا ہوشیار تھے، سوامی جی بڑا ہوشیار تھے، سنسار کے پھیرا سو بچنے کے لیے، سمجھ لیا، پھیرا تو نہ پاریا، پھیرا کے پھیرا میں تو نہ پڑا، پر اتنے بچے پیدا کیے کہ فوج تیار. تو آج ہماری یہ فوج تیار ہے. میری تکلیف یہ ہے کہ جب ہم ایک پتا کے 10 بیٹے ہوں گے تو 10 دکانیں کھولنی ہی پڑیں گی، کیوں جیت میں جی، ایک دکان سے کام تھوڑی چلے گا. اور ایک گاؤں میں کھولیں، 10 گاؤں میں کھولیں، مارواڑی لوگ بہت قدر ہوتے ہیں، ایک کو بینگلور بھیج دیتے ہیں، ایک کو مدراس بھیج دیتے ہیں، ایک کو کلکتہ، کیوں؟ لڑنے کا موقع ہی نہیں ہے. جب یہ 500 بیٹے تیار ہو گئے ہیں تو 500 دکانیں تو کھلنی ہے نا، کھلنی چاہیے نا. آخر ایک برق کہاں کریں گے، کام کہاں کریں گے؟ اس لیے ہماری پہلے ایک سونڈر تھا اور اس کے بعد دوسرا جے پور بنا، اور اب آج گاؤں گاؤں میں ہمارے تیرتھ بن رہے ہیں. تو نئے لوگ تیار ہوں گے کام کرنے والے، تو نئے نئے استھان بھی چاہیے اور نئی نئی سنستھان بھی چاہیے، دکان بھی چاہیے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑے بیٹے کی دکان بینگلور میں ہے، دوسرے کی مدراس میں ہے، تیسرے کی بمبئی میں ہے، چوتھے کی کلکتے میں ہے، اور باپ کی دکان کہاں کہاں ہے؟ ساری جگہ ہے. کیوں؟ تو آپ سب لوگوں کے ہاتھ میں تو ایک ایک سنستھا ہے، ایک ایک گاؤں ہے، ایک ایک ضلع ہے، ایک ایک پرانت ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہماری تو یہ ساری سنستھائیں ہماری ہیں، کیونکہ ہر سنستھا میں ہمارا ودیارتھی بیٹھا ہے اور ہم نے اسے توتے جیسا بتایا ہے. 5 سال تک بھگوان آتما صبح اٹھ کر اسی کی بانگ دیتا ہے، وہ مرغا دوسری بات بولتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ تو وہ جو ساری سنستھائیں جو اس گرودیو کی تتو گیان کو پرچار پرسار کرنے کے سمپرک میں لگ رہی ہیں وبھن الگ الگ ایریوں میں، سمجھ رہے ہیں، یہ بہت اچھا لکشن ہے، لیکن اسے سنبھالنے کی ضرورت اوشیہ ہے، نہیں تو سینا جھپٹی شروع ہو جائے گی. ہم کو بہت گمبھیرتا سے وچار کرنا پڑے گا. ابھی احمد آباد میں میں نے ایک بات کہی تھی، بہت مارمک بات ہے، میں آج آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں. पंच कल्याण खपाने हो रहे हैं ना, कितने 85 बताए अभी आप लोगों ने, सेवा फेडरेशन के संचालकत्व में टोडर मल स्मारक के निर्देशन में 85 पंच कल्याणक हमने कर लिए हैं पिछले 30 सालों में। क्यों? हर साल चार पांच होते हैं। अब जो पंच कल्याणक हो रहे हैं वे वैसे ही हो रहे हैं क्या, कोई अलग टाइप के हैं? उनके कार्य करने वाले वही लोग हैं कि अलग लोग हैं? मेरे को तो याद नहीं आ रहा कि किसी पंच कल्याणक में मेरी अनुपस्थिति हुई हो। नहीं। तो अब जो हो रहे हैं कि होंगे वो सब वैसे ही होंगे ना, अर्थ क्यों, और वही लोग करेंगे ना, और ऊपर हम अपना नाम चेंट दें, छीना झपटी नहीं हुई है क्या? क्या हो जाए? एक काम संगठन का हुआ कि विघटन का? पांच सौ छह सौ विद्वान अपने यहां से जाते हैं, युवा फेडरेशन और टोडर मल स्मारक ट्रस्ट उन्हें भेजता रहा है। कब से, जब से सोनगढ़ और जयपुर अलग अलग हुआ था तब से 25 से शुरू हुए थे और 506 तक पहुंच गए। अब वही आदमी काम कर रहे हैं, वहीं से हो रहा है, और कल कोई नाम टोडामल का नाम हटा के, युवा फेडरेशन का नाम हटा के अपना नाम चेंट दे कि मैंने 500 विद्वान प्रचार करने के लिए भेजे, तो क्या होगा? चलो जो होगा सो होगा, लेकिन काम कहां हुआ? काम तो वही हुआ था ना जो हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि भाई अब कुछ काम ऐसा करो कि जो अभी तक नहीं हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं उन्हें वो काम करने दो। हमें मंदिर भी चाहिए, स्वाध्याय भवन भी चाहिए, पाठशाला का भवन भी चाहिए, है ना, धर्मशालाएं भी चाहिए, क्योंकि मंदिर नहीं होंगे तो हम पूजन कहां करेंगे? स्वाध्याय भवन नहीं होंगे तो हम स्वाध्याय कहां करेंगे? पाठशालाएं नहीं होंगी तो हमारे बच्चे कहां पढ़ेंगे? धर्मशालाएं नहीं होंगी तो हमारे शिविर कहां होंगे? सब चीजों की जरूरत है ना, लेकिन ये ऐसे काम हैं कि जिसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें माने पंडित हुकुमचंद को, हमें माने पंडित हुकुमचंद को नहीं, 500 विद्वानों को, बस एक निश्चित बजट देना है, एक इंजीनियर को नियुक्त कर देना है और उसे बजट उपलब्ध करा दो तो धमाधम धमाधम साल भर के भीतर खड़ी हो जाएंगी बिल्डिंग। गोविंद जी ने पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी ना 2000 विद्यार्थियों की एक साल के भीतर। उनने कितना ईट पत्थर उठाए थे? क्यों? महीना 15 दिन में एक आध चक्कर काटा ना भारतचंद जी साहब, देख लेना कितना बन रहा है। क्यों? लेकिन वो मंदिर बनकर और उसके बाद उसमें पाठशाला डेली चलना, स्वाध्याय डेली चलना, जिनवाणी का अध्ययन अध्यापन होना, रोजाना पूजन पाठ होना, ये निरंतर का काम है, ये एक दिन का काम है और पैसे से नहीं होगा। समझे? तो ये काम कौन करेगा? ये काम 500 विद्वान करेंगे। तो हमारे वो लोग जो मंदिर बना रहे हैं कि बनाएंगे, कि स्वाध्याय भवन बना रहे हैं कि बनाएंगे, वे हमारे विरोधी कहां है? वे तो हमारे परम सहयोगी हैं, हमारे लिए स्थान उपलब्ध करा रहे। स्वाध्याय भवन नहीं होंगे तो हमने करोड़ लाखों किताबें छपाते जा रहे, रखी कहां जाएंगी? गांव गांव में बिक्री के केंद्र कहां खुलेंगे? खड़े होने की जगह नहीं होगी तो ये सुबह कहां होंगे? मेरे कहने का मतलब है कि ये कोई एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, लेकिन बड़ई का काम बड़ई करता है, नाई का काम नाई करता है, धोबी का काम धोबी करता है, विद्वानों का काम विद्वान करेंगे इंजीनियर का काम इंजीनियर करेगा, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा। तो ये हमारे बहुत बड़ी कमी है कि हमारे गांव गांव में जहां मुंशु रहते हैं वहां मंदिर नहीं है, वहां स्वाध्याय भवन नहीं है अच्छे, वहां अच्छी धर्मशालाएं नहीं है, पाठशाला भवन नहीं है। तो इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और कोई व्यक्ति इस काम को करता हो तो उसको जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। और उसका सहयोग समाज को पूरी तरह लेना चाहिए और उन्हें सहयोग देना भी चाहिए, इसमें कहीं कोई विरोध की बात नहीं है। लेकिन आजकल जो सस्ती लोकप्रियता का जमाना हो गया है ना, कि फटाफट कहीं भी चलती हुई ट्रेन में अपना नाम जोड़ देना, तुम्हारी बात करो कुछ जनरल गांधी चौक का समझे ना, कुछ मिटाकर और उसके ऊपर नाम अटल बिहारी चौक रख देना, कितना सरल काम है, कुछ नहीं करना, एक ईंट नहीं लगाना, अंबेडकर चौक रख देना। क्यों? उनका राज आएगा तो अंबेडकर चौक हट करके तो तीसरा नाम लग जाएगा। अरे भाई, ये गांधी चौक को गांधी चौक रहने दो और अंबेडकर चौक एक और बड़ा, बहुत बढ़िया, उससे भी बढ़िया अंबेडकर चौक बनाओ ना। तो छीना झपटी का काम नहीं होने का चाहिए। आप कह सकते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं भाई, इस बात भी समझने की, समाज को समझने की जरूरत है। जब तक समाज का ध्यान नहीं जाए जलाओ से, उसकी समझ में नहीं आता है। फिर हम अपने काम गिनाने के लिए, आज हमने संस्था खरी हो, काम हमने एक किया एक किया, क्या अभी तो तुम पैदा नहीं भय, अभी तो दूध नहीं छूटा है, अभी क्या क्या हुआ, अभी क्या करेंगे वो कहो तो वो समझ में आती है। लेकिन क्या हुआ, हुआ के लिए तो कुछ समय चाहिए ना। क्यों? तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो इतनी दुकानें खुल रही हैं, वे सब ईमानदारी से अपना अपना काम करें, इस सब की बहुत आवश्यकता है। इससे समाज में संगठन रहेगा। पर युवा फेडरेशन में जिसके खासकर असली कार्यकर्ता जो है वो विद्वान है, 10-5 विद्वानों के मान लो यहां नाम गिनाए गए, लेकिन उनसे थोड़ी काम होगा। जब एक एरिया में हम ग्रुप सिविल लगाएंगे और 150 विद्वानों की जरूरत होगी तो क्या होगा? क्यों वे 150 विद्वान कहां से आएंगे? कि इन्हीं विद्वानों में से जो तैयार हैं उनको आएंगे ना, तो असली कार्यकर्ता तो वो हैं जो फ्रंट पर जाके काम करेंगे। तुम तो मैनेजमेंट करोगे। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारी मुक्ति समाज को इस काम के लिए भी जागृत रहना चाहिए कि हम सब संस्थाएं जो काम करें वो 10 गुना काम बढ़े और आपस में एक दूसरे से टकराए नहीं। यदि उन्हें टकराने की कोशिश की तो संगठन नहीं होगा बल्कि विघटन होगा। इसलिए समाज को इस दिशा में बहुत चेतने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं मैं युवा फेडरेशन वालों से खासकर, कि ये देश बहुत लंबा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है ना, और समझ लीजिए सोनगढ़ तक, चल लीजिए मणिपुर तक। इतने बड़े देश में कितनी भाषाएं, कितने प्रांत, कितने परंपराएं, कितने पंथ, 13 पंथ, 20 पंथ, 16 पंथ, क्यों कितनी कितनी है। तो सारे देश में हमें भगवान महावीर के तत्व ज्ञान को पहुंचाना है, तो ये जो विभिन्नताएं हैं उन मुद्दों से थोड़ा हमें ऊपर उठना पड़ेगा। यदि हमने पूजन पद्धति को मुद्दा बनाया तो हम एक एरिए में सीमित के रह जाएंगे, समझ में आया ना। तो हम उसको मुद्दा नहीं बनाए, हमें तो 7 तत्व सिखाना है, हमें तो 6 द्रव्य पढ़ाना है, हमें तो सदाचारी जीवन लोगों को सिखाना है। तो इसलिए वो जिस काम का जो हो, कसाब देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो प्रांत से संबंधित होती हैं। क्यों नहीं, एक गुजराती एक खांकड़ा खाता है, हमारे बुंदेलखंड में बासी रोटी खाता है, महापापी है, बासी रोटी कोई खाता ही नहीं हमारे यहाँ। क्यों, तो खांकड़ा खाना कोई मूंछू का काम थोड़ी है, वो तो गुजरात की हिंसा ही है, वो तो गुजरात की प्रकृति है, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। और आपके यहाँ कोई चीज चूरमा बाटी खाई जाती है, कुछ भी समझ लीजिए, तो वो अलग, कोई उसे सकड़ा कहता है, कोई उसे चौड़ा कहता है, इस चौके के बाहर नहीं जाना चाहिए, चौके के अंदर नहीं जाना चाहिए, जहां ये खाना खाने दो, हमें उस खांकड़े से क्या लेना देना है, हमें तो सात तत्व बताना है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो विभिन्नताएं हैं उनसे अपने को दूर रखना, और जो तत्व ज्ञान की एकता है, जो मूल तत्व ज्ञान है, जो भगवान महावीर की वाणी में आया था, जो कुंद कुंद की वाणी में आया था, जो स्वामी जी ने हमें समझाया है, भाई आप लोगों ने बहुत कठिन काम लिया है। सारे देश में जाकर आपको ये समझाना है कि कोई किसी को समझा नहीं सकता। क्या सारी दुनिया को ये कराना है कि एक दूसरे का कोई कुछ कर नहीं सकता। ख्याल है ना कितना कठिन काम है, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो करो की भाषा में कोई किसी को कर नहीं सकता, वो तो गायब ही हो जाता। सौंदर्य का पंच कल्याणक था, विद्वत सम्मेलन हुआ था, पंडित फूलचंद जी उसके अध्यक्ष थे, कैलाश चंद जी और जगन मोहन लाल जी मुख्य अतिथि थे, और मैं कन्वीनर था, स्पीकर मेरे हाथ में था। तो जब कैलाश चंद जी का व्याख्यान हुआ तो उनने कहा कि स्वामी जी कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये जो 25,000 आदमी आए हैं वो आपके निमित्त से आए हैं कि नहीं आए हैं, बोलो। हम स्वामी जी के निमित्त से आए ना, सुन रहे क्यों? तो मैंने कहा था कि गुजरात में आग लग रही थी भयंकर, जयप्रकाश का आंदोलन चल रहा था ना, क्यों? ऐसे समय में ये लोग सोनगढ़ में इसलिए आए हैं, ये सुनने आए हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, और हमारा उपकार तो उन लोगों ने बहुत किया था, गांव गांव में जाके समझाया था कि स्वामी जी एक पैदा हुए हैं, वो कहते हैं निमित्त कुछ नहीं करता है, तो उनको जिज्ञासा देगी कि देखते तो आए कि कौन से स्वामी जी है और वास्तव में क्या कहते हैं। क्यों, तो आधा काम तो हमारा उन लोगों ने कर दिया, गांव गांव में जाकर बिना पैसा लिए बिना तनखा के, हम कहते 50,000 में हम 5,000 गांव में इस तत्व ज्ञान पहुंचाएंगे, उनने तो मुफ्त में पहुंचा दिया तुम्हारा तत्व ज्ञान उन तक कि निमित्त कुछ नहीं करता। क्यों, और वो उस बात को कन्फर्म करने के लिए यहां आए हैं। बाद में उनको तो वो सबने तो बहुत तालियां ठोकी थी, लेकिन उन्हें बहुत बुरा लगा, हमारी बात काट दी इन्हें, हमारी बात काट दी इन्हें, हमारी बात काट दी इन्हें। तो मेरे कहने का मतलब है जो अपना तत्व ज्ञान है वो बहुत गहरा है, वो जगत की मान्यता से एकदम उल्टा है, कोई किसी को एक दिल दूसरे दिल का करता नहीं है, निमित्त करता नहीं मान, एक दिल दूसरे दिल का करता नहीं है, कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता है, कोई किसी का बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता है, कि दया धर्म क्या, जब कोई किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकता है तो क्या मारो क्या बचाओ। हमें बंधाधिकार की वो गाथाएं सुनानी है, कहने के आयु कैसे मरण हो यह बात जिनवर ने कही, क्यों तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, मुझे आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, तुम बता कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बता नहीं सकता, ये सारे जगत को ये बहुत बड़ा समझाने का काम आपने अपने माथे पे लिया है, और असली काम तो ये है, बाकी ये काम सब इसके सहयोगी हैं, चाहे संगठन हो, चाहे मंदिर हो, चाहे स्वाध्याय भवन हो, ख्याल में ना, ये सब इसके सहयोगी हैं। अब धीरे धीरे हमारे लिए वो मुख्य हो जाता है। कभी कभी हमें काम गौण हो जाता है और हमने क्या क्या किया ये समझाना मुख्य हो जाता है। परमात्म कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गांव में जाकर काम करते हैं साल भर तक लगातार, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमने कितना काम किया तो सिर्फ स्टेज पर सुनाने आते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमको इसके साथ में वो काम भी रोजाना स्वाध्याय, हर युवा फेडरेशन के मेंबर की ये ड्यूटी है कि आत्मानुभूति उसका लक्ष्य है ना, तो उसके लिए तत्वज्ञान बहुत जरूरी है, तो वो स्वाध्याय का नियम ले आत्मा के कल्याण की भावना से, तब वो पहला उद्देश्य पूरा होगा। और तत्व प्रचार, भाई तत्व प्रचार अपने घर से शुरू होता है, खल जाएंगे ना हमारे बच्चे, हमारे अड़ोसी, हमारे पड़ोसी, वो तो रूखे रह जाएं और सारी दुनिया को हम तत्व की बातें कहें तो ये शोभा की चीज नहीं है। हमारे मुंशियों में ऐसे नहीं है कि जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और सारे समाज को चलाने का ठेका लेते हैं, लेकिन उनके घर में देखो कि उनके बच्चों को, नातियों को, पोतों को कब मंदिर भी जाते हैं, नमोकार मंदिर भी आता है, और कभी उन्होंने चिंता की क्यों इस बात की? स्टेज पर आगे सारी समाज की चिंता करेंगे, गुरुदेव के तत्व ज्ञान का क्या होगा? क्यों? अरे गुरुदेव के तत्व ज्ञान का तो जो होगा तो होगा, तेरे बच्चों का क्या होगा? ये धर्म के संस्कार तेरे घर में नहीं रहेंगे तो क्यों? चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। मैं तो कहता हूं कि एक ऐसी कसौटी होनी चाहिए हमारी। मैं एक बात कहता हूं कि जिस आदमी के पास जो कुछ अपने माँ बाप से मिला हुआ होता है उसे वो अपनी आगामी पीढ़ी को 10 गुना करके दे जाना चाहता है। जिंदगी भर किराए के मकान में रहता है तो बुढ़ापे में मरते मरते जमीन खरीद कर 2 कमरे का एक मकान बनाता है और बच्चों को सौंप देता है और खुद बाहर दालान में पड़ा रहता है। करता है कि नहीं करता है? तो आपकी बड़ी संपत्ति थी ये, जो आप में धार्मिक संस्कार है, ये जो तत्व ज्ञान है, ये जो सदाचारी जीवन है, ये हमारी संपत्ति है कि नहीं है? और यदि है तो जैसी वो संपत्ति अपने बच्चों को दे जाने के लिए हम तैयार हैं, ऐसे संस्कार हम अपने बच्चों को दे जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? एक दफे तो मैंने एक बहुत बड़े आदमी से, अब नाम नहीं कहना हूं क्योंकि उनका स्वर्गवास हो गया है, ये कहा था कि सब बच्चे सुनते ही नहीं, बच्चे सुनते ही नहीं, हम तो बहुत कहते हैं बच्चे सुनते ही नहीं। मैंने कहा क्यों? तुम्हारा बेटा यदि एक मुसलमान की लड़की को ले आता, कहता मैं उससे प्यार करता हूं, तो तुम उसे घर में रख लेते? कि मेरी सुनता ही नहीं, हमें सुनता ही नहीं। कहते देख तूने अभी ये किया तो मेरी संपत्ति में से एक नया पैसा तेरे को नहीं मिलेगा, सब मंदिर को दे जाऊंगा। क्या बोल, क्या करना है? ऐसे बापों की कमी है दुनिया में। टीवी पर भी देख लो, सिनेमा में देख लो, कुछ नहीं मिलेगा। उन बेटों की बात मैं नहीं कहता हूं कि ज्यादा मत देना, लेकिन मैं तो उनकी बात मैं नहीं करता, मैं तो उन बापों की बात करता हूं। तो मैंने कहा कि साहब सेठ जी, एक बार आपने ये कहा कि तूने यदि स्वाध्याय नहीं किया, मंदिर नहीं गया, इस तत्व ज्ञान नहीं सीखा तो मेरी संपत्ति में से एक नया पैसा नहीं मिलेगा, मैं सारी संपत्ति वहां फेडरेशन को देके जाऊंगा और गांव गांव के बच्चों में संस्कार डालूंगा। बोलो कहा किसी ने? फिर नहीं आता वो मंदिर में तो हम देखते। छाती पर हाथ रख के देखना, अरे तूने कहा, तेरे कहने में दम ही नहीं है। अरे हाथ जोड़ के कहता है दादाजी हो तेरे, भैया दादा करे आया करे भी ये क्या क्यों? जैसे नहीं कहो, ऐसा नहीं कहता हूं कैसे मत कहो, लेकिन वैसे काम न चले तो इस लेवल तक आना चाहिए, और फिर वो ना आए तो हम आपको माफ करने को तैयार हैं। ये तक कहा था मैंने बहुत बड़े आदमी से, मैंने कहा नाम सिर्फ इसलिए नहीं बताता हूं कि स्वर्गवास हो गया, कि नहीं कहा तो ये मत कहो कि हमारी नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमने तुम्हें वो देखा है कि जब वो तुम्हारी नहीं सुने तो तुम कितना बड़ा रिएक्शन देते हो और लौकिक काम में, ख्याल में आ रहा, अखबार में निकाल देते हैं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, इससे कोई लेन देन करेगा तो क्यों मैं उसका जुम्मेवार नहीं, अखबार में निकाल देते हैं ना। जयंती भाई, धर्म के नाम पर किसी ने किया मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम सबको अपने घर से वो काम शुरू करना चाहिए, घर में जो घर घर में पाठशाला होना चाहिए। और हमने बंबई में जो प्रोग्राम शुरू किया है, जो अपने महोत्सव सम्मेलन हुआ था ना देवलाली में, तब तय किया था, अब वो क्रियान्वित हो रहा है कि हम घर घर में विद्वान को पहुंचाएंगे और एक विद्वान को 10,000 रुपए महीना और मकान और मोबाइल और आने जाने का वो जाना पड़ेगा ना, उसका किराए का पूरा खर्चा वो सब देंगे। और जो आदमी मांग करेगा उसे 100 रुपए घंटे लेंगे, वो विद्वान को भेजेंगे, वो संस्था लेगी, जितना घाटा होगा वो संस्था सहेगी, उस विद्वान को कुछ लेना देना नहीं है, विद्वान उससे एक पैसा नहीं लेगा। अभी शुरू में 50,000 रुपए महीने का हमने बजट बनाया है घाटे का, और बढ़ाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह कि जिनवाणी को घर घर तक पहुंचाएंगे तो ये विद्वान पहुंचाएंगे, ये असली हमारे सरकार के साधन ये हैं, जिनका सात्विक जीवन होगा, जिनका परिवार सात्विक है, वो है, वो हमारा सबसे ज्यादा महत्व फेडरेशन को सर्वाधिक महत्व उनको देना चाहिए, क्योंकि असली कार्यकर्ता वे हैं। और मैं एक ही बात आपसे कहता हूं, कोई कुछ भी करे, तुम तो जीवन में एक ही काम करना कि मैं इस जिनवाणी माता में जो बातें आई हैं गुरुदेव के तत्व ज्ञान को, वो अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में, अपने बगल के गांव में, अपने बगल के जिले में जितना संभव होगा उतना पहुंचाऊंगा। तो इस तत्व ज्ञान को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, और इस छीना झपटी की कभी कोशिश नहीं करना और उसको कभी प्रोत्साहित नहीं करना। और समाज समझती नहीं है, यदि कहीं कुछ ऐसा होता है तो समाज को समझाना कि छीना झपटी है, ये छीना झपटी नहीं होना चाहिए, ये हमारी समाज को विघटित करेगी, संगठित नहीं करेगी। तो वह फिर फेडरेशन हमेशा रचनात्मक रास्ते पर चलेगा, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।